मुनि विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी, जिसके ध्यानदीप प्रकरण नौवें प्रकरण पर विचार चल रहा है और उसका 23वां श्लोक हुआ था ना। हाँ, आओ 23 और 24 में दोनों ही श्लोकों का उच्चारण कर लें। अप्रोक्षशिला बुद्धेर न परोक्षेशताम् नुदेत प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते अश्रद्धालो रविश्वासो अश्रद्धालो रविश्वासो नोदाहरणमर्हते श्रद्धालोरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः। प्रसंग चल रहा था कि ये जो सामने प्रत्यक्ष जो भ्रम हो रहा है, द्वैत भ्रम, उस द्वैत भ्रम का और परमात्मा का, ईश्वर का जो परोक्ष ज्ञान है, उसका विरोध नहीं है। एक थोड़ी जानकारी के लिए एक विचार कर दें। यहां पर यहां जो प्रसंग चल रहा है, ज्ञान को केवल दो भाग में विभक्त करके चल रहा है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान है। और जरा सूक्ष्मता से विचार करने वाले लोग ज्ञान के चार भेद करते हैं, ये ध्यान में रहे तो फिर प्रश्न खड़े नहीं होंगे, नहीं तो कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं। वैसे चार भेद मानते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अक्षणाप्रति, जो आंख के सामने है, इस पुष्प का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, बिल्कुल आंख के सामने है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। और ये पुष्प एक पौधे पर लगता है कि बड़े वृक्ष पर लगता है, ये प्रश्न यदि खड़ा होता है तो जिसने इसके कारणभूत वृक्ष को जाना वो ये कहेगा कि छोटा पौधा नहीं होता, यह बड़ा वृक्ष होता है। तो इस पुष्प का जो कारण है वो पौधा नहीं है, वो वृक्ष है। ये ज्ञान हमको हो गया ना कि ये पुष्प किसी वृक्ष पर लगता है, पौधे और वृक्ष में समझते हैं ना, तो वृक्ष पर लगता है। अब वो जो वृक्ष का हमें ज्ञान हुआ, एक तो पुष्प का ज्ञान है, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, और ये जिस पर लगता है वो वृक्ष है, उस वृक्ष का ज्ञान कौन सा ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान हो गया। अच्छा, दूसरा तीसरा जो ज्ञान होता है अपरोक्ष ज्ञान होता है, वो जहां अक्ष की आंख की जरूरत नहीं पड़ती, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इस दर्द का ज्ञान कौन सी आंख से हुआ भाई, वहां कोई कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय काम नहीं कर रही है। ये जो दर्द का ज्ञान हो रहा है मन में बड़ी प्रसन्नता है या बड़ी खिन्नता है, ये प्रसन्नता और खिन्नता का जो ज्ञान हो रहा है ये बाहर का नहीं है, भीतर का है। प्रसन्नता भीतर है, दर्द आदि भीतर है, ये अपरोक्ष ज्ञान है, इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान है। और जो दर्द का ज्ञान है, प्रसन्नता अप्रसन्नता का ज्ञान है, ये ज्ञान किससे हो रहा है? साक्षी चैतन्य से, उसको प्रकाशित करने वाला। तो जो साक्षी चैतन्य का मैं के रूप में बोध है, ज्ञान है, कि ज्ञान का भी जो ज्ञान है, ज्ञान को भी, वृत्ति ज्ञान को भी जो प्रकाशित कर रहा है, वो साक्षी चैतन्य ज्ञान स्वरूप है, वो मैं स्वयं हूं, ये ज्ञान है साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है, इसको बोलेंगे साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान और साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। ज्ञान के चार भेद हो गए। यहां पर जो विचार चल रहा है वहां प्रत्यक्ष को और अपरोक्ष को भेद करके नहीं देखा जा रहा है। मोटे मोटे रूप में इनको दो ही भेद किए गए हैं, एक परोक्ष ज्ञान है और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष है उसको भी अपरोक्ष, इसलिए कि वो बिल्कुल सामने है, उसको आंख से देख रहे हैं, भीतर से अनुभव भी कर रहे हैं, इसलिए यहां पर उसको अपरोक्ष की दृष्टि से लेते हैं। तो दो ही भेद यहां पर किए गए। अब कहते हैं वो जो कल प्रसंग चल रहा था कि जो द्वेत है उसका सबको अपरोक्ष हो रहा है, ये अपरोक्ष जो है वो भ्रम है, और जो ब्रह्म है शास्त्र से है करके उसको जाना है, ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष द्वेत जितना भी है ये ब्रह्म है जिसका अपरोक्ष ज्ञान हो रहा है, और वस्तुतः जो अपरोक्ष है आत्मा, अभी चूंकि उसको मैं करके अनुभव नहीं किया, साक्षात अपरोक्ष नहीं किया है, शास्त्र से ही जाना है, इसलिए आत्मा का जो ज्ञान है सच्चित आनंद स्वरूप आदि से वो परोक्ष ज्ञान है, उस आत्मा के परोक्ष ज्ञान का और द्वेत के अपरोक्ष ज्ञान का। आत्मा का तो परोक्ष ज्ञान है और द्वेत का अपरोक्ष ज्ञान है, इन दोनों ज्ञानों का विरोध नहीं है। ये 23वें श्लोक में उसका उदाहरण देकर के समझाया गया कि जिस प्रकार से शिला जो होती है पाषाण खंड है, जिसको हम शालिग्राम करके पूजा करते हैं, वो पाषाण खंड तो हमारे लिए अपरोक्ष है, लेकिन जिस विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो अभी परोक्ष है। चतुर्भुज आदि रूप से भगवान विष्णु को जो हमने जाना है वो शिला में कहां है? चार भुजा। आजकल तो मूर्तियां बनने लग गई, लेकिन हमारी जो प्राचीन पूजा थी ना, वो पिंड में शिव जी की और शालिग्राम में भगवान विष्णु की पूजा प्रधान थी। अब धीरे धीरे पौराणिक पूजा में जैसा वो कल्पना की जाती है उस प्रकार से अंगों की भी कल्पना कर लेते हैं, पर यहां इसलिए वो केवल शालिग्राम को लेकर के बताया जा रहा है कि चतुर्भुज आदि रूप नहीं होते, परंतु फिर भी उस पाषाण में जो अपरोक्ष है, उस अपरोक्ष पाषाण में परोक्ष भूत जो विष्णु है उसका ज्ञान होता है, और दोनों का कोई विरोध नहीं है, दोनों एक साथ रहते हैं। प्रतिमादेशो विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते, इसलिए प्रतिमा के भीतर उस शिलाखंड में विष्णुत्व का जो ज्ञान होता है कि ये विष्णु है, उस परोक्ष ज्ञान का विरोध कौन कर सकता है भला बताइए? कौन कहेगा कि उस शालिग्राम में विष्णु नहीं है, पिंड में शिवजी नहीं है? उसको कौन सिद्ध कर सकता है? उसका विरोध कौन कर सकेगा? तब यहां पर एक कल्पना किया, कोई साधारण व्यक्ति बैठा था, बोले ऐसा तो नहीं कि उसका कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध करने वाले बहुत बैठे हैं संसार में है? ये तो आप लोग आस्तिक लोग हो, इसलिए मान लेते हो, गुरुजी ने कहा और आपने मान लिया कि इस शिलाखंड में भगवान विष्णु है और इस शिलाखंड में भगवान शिव है, आप लोग श्रद्धा वाले हो, आस्तिक को इसलिए मान लेते हो। लेकिन जो नास्तिक लोग होते हैं, तर्क प्रधान लोग होते हैं, वो न भी माने, आप कैसे कहते हो कि को वा विप्रतिपद्यते, इसी के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि विष्णु मूर्ति में, प्रतिमा में जो विष्णु है छुपे हुए चतुर्भुज आदि, भला विष्णु तो का जो पाषाण है वो प्रत्यक्ष होते हुए भी उस परोक्ष को कौन निवारण करेगा, परोक्ष ज्ञान को? शालिग्राम के अंदर विष्णु का ज्ञान होता ही होता है। तब वो प्रश्न खड़ा किया गया कि नास्तिक कैसे मानेंगे इस बात को, तो उत्तर दे रहे हैं कि यहां नास्तिकों को उपस्थित करने की जरूरत नहीं है। 24वां श्लोक इसी बात को बोल रहा है, केचन विप्रतिपद्यमाना उपलभ्यन्ते, कहा कि प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा प्रतिपद्यते, प्रतिमा आदि में जो विष्णु है उसका कौन निवारण कर सकता है? तो पूर्व पक्ष ने खड़ा कहा किया प्रश्न कि केचन विप्रतिपद्यमाना उपलभ्यन्ते, हां कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रतिमा के अंदर विष्णु को नहीं देखते, वो तो कहेंगे क्या ये तो पत्थर है, पत्थर की पूजा कर रहे हो, पत्थर पूजने से तो अच्छा है कि इसे पत्थर का उपयोग कर लो, आटा वाटा बनाने में चक्की काम आएगी, बोल देते हैं। पहाड़ पूजे हरि मिले तो पूजो मैं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खावे संसार, कबीर का दोहा बोलते हैं, पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पहाड़ की पूजा करने लग जाऊं। अरे या ऐसा अंधविश्वास छोड़ो, उससे तो अच्छा है ये जो आटा पीसने की चाकी होती है, ये चक्की अच्छी है, कम से कम लोगों को आटा बना करके तो दे रही है, तो जिस पत्थर की पूजा करते हो पत्थर तुम्हें क्या देगा, ऐसे आक्षेप कर लेते हैं। तब कहते हैं कि केचन भी प्रतिपद्यमाना उपलब्ध्यन्ते, इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो प्रतिमा में विष्णु को नहीं देखते, प्रतिमा में विष्णु को नहीं देख रहे हैं, विष्णु का परोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा उनको, ऐसे तो हैं। तब उसका उत्तर दे रहे हैं कि ठीक है, जो कुछ देखने वाले लोग हैं उनको वहीं रहने दो, हमारी सभा में मत लाओ, इस सभा में लाने की जरूरत नहीं है, वही देव उत्तर दे रहे हैं। अश्रद्धालो अविश्वास न उदाहरणम अर्हति, जो अविश्वास वाला व्यक्ति है, जो श्रद्धा रहित है, जिस अविश्वास का मतलब है जिसको श्रुति पर विश्वास नहीं है, जिसको शास्त्र पर विश्वास नहीं है, और जिसको विश्वास नहीं होगा फिर वह श्रद्धा नहीं करेगा। श्रद्धा करने के लिए पहले विश्वास की जरूरत होती है, इसलिए मानस में आया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। भगवान शिव क्या है? विश्वास है। और भगवती क्या है? वो श्रद्धा है। विश्वास और श्रद्धा को ही प्रणाम किया गया है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि विश्वास और श्रद्धा है, यही मेरे लिए भगवान शिव और पार्वती हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं रह सकती, बिना विष्णु के लक्ष्मी नहीं रह सकती, बिना शिव के पार्वती नहीं रह सकती। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वर्णव शंभु नित रहूं कुमारी, मैं शिव के बिना नहीं रह सकती, वही चाहिए। तो विश्वास और श्रद्धा दोनों साथ रहने वाले हैं, विश्वास होगा तभी श्रद्धा होगी। जो अविश्वास है, विश्वास रहित पुरुष है, वो अश्रद्धालु, वो श्रद्धा रहित है। उस श्रद्धा रहित का यहां पर षष्ठी विभक्ति अश्रद्धालो, अश्रद्धालु शब्द में अश्रद्धालु आया ना, यहां षष्ठी विभक्ति है, और अविश्वासों में यहां कौन सी विभक्ति है? विश्वास रहित पुरुष प्रथमा विभक्ति है। जहां विश्वास नहीं है, विश्वास रहित जो अश्रद्धालु पुरुष होता है उसका उदाहरणम न अर्हति, यहां उसका उदाहरण देना उचित नहीं है। तुम कहते हो कि केचत विप्रतिपद्य मानव उपलभ्यन्ते, हाँ हाँ कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो प्रतिमा आदि में विष्णु को नहीं मानते, जो मूर्ति में भगवान की पूजा का विरोध करने वाले हैं वो प्रतिमा में विष्णु को कहां मानते हैं। केचन कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं, बोले ठीक है पर उनका उदाहरण यहां पर मत दो, वो उचित नहीं है यहां पर। क्यों? श्रद्धालु रेव सर्वत्र वेदिकेशु अधिकारत, बोले यहां हमारी वैदिक परंपरा से विचार मंथन हो रहा है और जितना भी वैदिक चिंतन होता है उन वैदिक चिंतन में चिंतन का मंथन का विचार का अधिकारी कौन है? श्रद्धालु रेव सर्वत्र वेदिकेशु अधिकारत है। वैदिक शास्त्रों में सब जगह श्रद्धालु का ही अधिकार है। ये श्रद्धा पहले होती है और उसी का यहां पर अधिकार होने के कारण है जो हमारा विचार चल रहा है उन अश्रद्धालुओं का नहीं चल रहा जो विश्वास नहीं करते शास्त्र के ऊपर। प्रसंग यहां पर श्रद्धालुओं का ही है क्योंकि वैदिक प्रसंग चल रहा है, वैदिक चिंतन कर रहा। अब बताइए प्रतिमा में कोई तर्क करने लग जाए कि भाई शालिग्राम में विष्णु कैसे है, शालिग्राम में वो चतुर्भुज विष्णु कैसे है, तो कहेंगे कि यह तर्क यहां नहीं चलता। शास्त्र ने कहा है पूजा करने बैठते हैं तो एक सुपारी उठाई पंडित जी ने और उसको रोली मोली लगा लगो करके गोल मटोल करके सामने रख दिया और बोले गणपति जी का ध्यान करो। सुपारी को गणपति जी बता दिया और पूजा करने लगे तो पूजा सामग्री में एक सुपारी उठा करके वो गणपति जी को समर्पित भी कर दिया। अब एक सुपारी गणेश जी आराध्य हो गया और दूसरी सुपारी उठाई वो आराधन साधन हो गया, साध्य भी कर लिया, एक को साधन कर दिया। अब वहां पूछे कि पंडित जी महाराज ये सुपारी तो गणेश जी हो गई, इसको गणेश जी क्यों नहीं बनाया, ये पूजा की सामग्री क्यों रह गई? पंडित जी क्या जवाब देंगे भाई? यही कहेंगे भाई माथा मत चाटो, जो शास्त्र का विधान है श्रद्धा से कर लो। तुम्हें पेड़ गिनने हैं कि आम खाने हैं, ये क्यों है क्या है कैसे ये मत सोचो, श्रद्धा से मान लो चूंकि बता दिया। इसलिए वैदिक जो कर्म होता है, वैदिक अनुष्ठान आदि होता है, वो श्रद्धा ही वहां पर प्रधान होती है, तर्क प्रधान नहीं होते। और ऐसे जो तर्क वाले लोग हैं उनका यहां पर कोई प्रसंग नहीं है। इसलिए उनका यह कहना कि कुछ ऐसे भी हैं जो विष्णु में प्रतिमा में विष्णु नहीं देखते, बोले नहीं देखते होंगे पर हम तो देखने वाले लोग हैं। अश्रद्धालो एव सर्वत्र वेदिकेशु, श्रद्धालो एव सर्वत्र वेदिकेशु अधिकारत, वैदिक कार्यों में, वेदिकेशु का अर्थ करो जितना भी वैदिक कार्य है, कर्म है, उपासना है, ये सारा वैदिक कार्य है। वेद के अनुसार कर्म उपासना होती है, जिनको विहित कर्म बोलते हैं, वेद प्रणिहितो कर्म, जिसको वेद ने विधान कर दिया। अब कोई कहे कि मंदिर में वो एक मरे हुए पशु की कच्ची चमड़ी को नगाड़ी में लगा करके मंदिर में ले जाते हैं, बजाते हैं, वहां अपवित्रता क्यों नहीं होती? और कोई मुर्दे को छू करके आ जाए तो मंदिर में क्यों नहीं जाते? किसी के घर में मृत्यु होती है तो 12 दिनों तक उसका सूतक मान लेते हैं। एक तो किसी के यहां मर गया और बेचारे को आग में जला दिया और पीछे परिवार वालों में सूतक माना जा रहा है, और एक मरे हुए की चमड़ी को सीधे मंदिर में डाल दिया, वो परिवार वाला नहीं जा सकता और मरे हुए की चमड़ी मंदिर में पड़ी है, बोले ऐसा क्यों? क्या जवाब दोगे भाई? अरे ये शास्त्रीय है, ये तर्क का विषय नहीं है। शंख पवित्र है और कोई मरे हुए प्राणी की हड्डी मंदिर में ले जाओ बाबा, पूरा मंदिर धोना पड़ जाएगा, और उधर शंख के द्वारा ही भगवान की पूजा कर रहे, आरती कर रहे, निराजन हो रहा है। तो बोले ये जो शास्त्र है, शास्त्रेषु वेदिकेषु सर्वत्र श्रद्धालुरेव अधिकारतः, वैदिक शास्त्रों में सब जगह श्रद्धालु का ही अधिकार होने से ऐसे जो विश्वास रहित श्रद्धालु लोग हैं उनका उदाहरण यहां पर देना उचित नहीं है। अश्रद्धालो इति कुत इति आह, अश्रद्धालो रेव इति सर्वेषु वेदोक्ता अनुष्ठानेषु श्रद्धालो रेव श्रद्धावत एव अधिकारी त्वात इत्यर्थ। सीधा सीधा अर्थ है, संपूर्ण वेदोक्त जो अनुष्ठान आदि है उन अनुष्ठानों में श्रद्धालु पुरुष का ही, क्योंकि वो श्रद्धावान है इसलिए श्रद्धावत एव अधिकारित्वात, जो श्रद्धावान है उसका ये अधिकार है। नहीं तो श्रद्धा नहीं होगी, वो शास्त्र को भी पढ़ेगा ना, वह छिद्रान्वेषण करेगा, वहां कोई न कोई अपना तर्क लगाएगा। ये कहते हैं भगवान राम सीतान्वेषण कर रहे हैं, सीतान्वेषण कर रहे हैं और बड़ा विलाप हो रहा, हाय सीते हाय सीते हाय सीते। अब जो श्रद्धा रहित लोग हैं वो कहेंगे वो कैसे राम जी हैं, एक संसारियों की तरह सीता के लिए भटक रहे हैं। तुम्हारे राम जी सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, तो क्या उनको पता नहीं कि कौन उठा करके ले गया? त्रिकालज्ञ हैं, तो क्या ये पता नहीं था कि मैं जाऊंगा पीछे से रावण जी आएंगे श्रीमती को उठा ले जाएंगे, क्या उनको पता नहीं था? अब श्रद्धा रहित पुरुष तो यही तर्क करेगा ना। अब उसके भगवान जो लीला कर रहे हैं, मानववत जो लीला करके कोई शिक्षा देना चाह रहे हैं, मर्यादाएं स्थापित करना चाह रहे हैं, उस चीज पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो तर्क कर रहा है। अरे शास्त्र किस दृष्टि से इस विषय का प्रतिपादन कर रहा है उस चीज को तो वो नहीं समझता, वो तो तर्क को ही प्रधान रखता है। तो इस प्रकार श्रद्धारहित लोगों का तो शास्त्र में फिर कोई स्थान ही नहीं है, उनको तो संसार में रहने दो। ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है बहुत उच्च कोटि का प्रसंग है, क्योंकि द्वैत को मिथ्या सिद्ध किया जा रहा है और ईश्वर का जो परोक्ष ज्ञान है उन दोनों में मिथ्या द्वैत के मिथ्यात्व का और परमात्मा के परोक्ष ज्ञान का एक साथ विरोध नहीं है, द्वैत का अपरोक्ष हो रहा है और जो है सत्य तत्व है उसका परोक्ष ज्ञान हो रहा है। ये उच्च कोटि की चर्चा हो रही है, ये श्रद्धालुओं का ही विषय है, इसलिए अश्रद्धालु जो वेद के प्रति हैं, अनुष्ठान आदि के प्रति हैं, इन लोगों को यहां उपस्थित करने से कोई लाभ नहीं है, ये बात बताई। श्रद्धावत एव अधिकारित्वात् सर्वेषु वेदोक्त अनुष्ठानेषु, जितने भी वेदोक्त अनुष्ठान हैं उनमें जो श्रद्धावान पुरुष है उन्हीं का अधिकार होता है। ये वतावता परोक्ष ज्ञाने किम आयातम इति आह, ठीक है, कहते हैं कि श्रद्धावान का ये शास्त्र में अधिकार है और उन्हीं का यहां पर प्रसंग चल रहा है, आपको ये कहने का तात्पर्य क्या है? इतने मात्र से क्या हो जाएगा? यतावता परोक्ष ज्ञाने किम आयात, ठीक है कि शास्त्र को मान लिया कि ब्रह्म मात्रम ब्रह्म है, अस्ति ब्रह्म इति चेत वेजानात, ब्रह्म है यदि ऐसा जान ले तो इतना मात्र जानने से क्या सिद्ध हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? पुष्प है ये पौधे पर होता है कि पेड़ पर होता है, वो जानने से आपको क्या मिल जाएगा? पुष्प चाहिए था, पुष्प मिल गया, अब वो पौधे पर होता हो चाहे पेड़ पर होता उसको जानने से क्या मिलने वाला है? कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं अरे आम खाओ, अब कौन से आम पर लगा कौन से पेड़ पर लगा वो गिनने से क्या लाभ? तो परमात्मा का यदि परोक्ष ज्ञान शास्त्र से हो रहा तो इससे क्या हो जाएगा? तब बहुत सुंदर उसका उत्तर दे रहे हैं, देखो सकृदाप्तोपदेशेन प्रोक्ष ज्ञानं मुदभवेत् विष्णुमूर्त्योरुपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते सकृत आप्त उपदेशेन प्रोक्ष ज्ञानम् उद्भवेत विष्णुमूर्ति उपदेशो हि न मीमांसम अपेक्षते। कहते हैं देखो इसका अर्थ ये हुआ सकृत आप्तो उपदेशेन प्रोक्ष ज्ञानम् उद्भवेत। वो परमात्मा का जो परोक्ष ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान आप्तोपदेशेन उद्भवेत। आप्त पुरुष के द्वारा उपदेश देने से ही प्रकट हो जाता है। कब? सकृत एक बार। आप्त पुरुष कौन होता है? आप्त पुरुष वही होता है जो यथार्थ वक्ता होता है। यथार्थ वक्ता आप्त पुरुष जो जैसा है उसको बिल्कुल वैसा कहने वाला है। मायावी न हो, है कुछ और कहे कुछ, ऐसा नहीं है छुपा करके असलियत को और कुछ बना करके बोलने वाला नहीं, जैसा है वैसा का वैसा कथन करने वाला उसको आप्त पुरुष बोलते हैं। जो तत्वज्ञ पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, आप्त पुरुष है, जिन्होंने उसे सत्य को प्राप्त किया है, अनुभव किया है और जैसा अनुभव किया है उसको बता रहा कि वो है। ये चतुर्भाई है ना, इसको दसवस मस्तम असी ये उदाहरण बहुत प्यारा लगता है। वही है आप्त पुरुष का वाक्य दसमस्तम असी। बच्चा इस बात को भूल गया कि मैं स्वयं दशम हूं। वो ये मान रहा है कि हम लोग दस थे और गिनती में नौ ही बैठ रहे हैं। हाई भला वो दसवां कहां चला गया? नदी पार करते समय कहीं प्रवाह में चला तो नहीं गया? बड़ा परेशान हो रहा था और इतने में वो गुरुजी ही नदी पर स्नान करने के लिए आ गए जहां चेले जी पढ़ने के लिए जा रहे थे। वो बच्चा बड़ा परेशान था, रो रहा था। गुरुजी ने कहा बेटा क्या हो गया, चलो स्कूल चलो मैं नहा करके आता हूं। बोले गुरुजी स्कूल चले पर शाम को घर जाकर के क्या बोलूंगा, मुझे दायित्व दिया गया था कि तुम दस हो और तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दसों के दस वापस आ जाएं, पानी में सावधानी से उतरना, पार होकर के गिन लेना कि दस हो कि नहीं, हम तो नौ ही रह गए। तो गुरुजी ने गिना तो वो टोटल दस थे। वो रो रहा था, बोले रो मत, दसवां है, पानी में बह करके नहीं गया। अब जो ही चूंकि गुरुजी ने कहा आप तो पुरुष है, यथार्थ वक्ता है, हमारे गुरुजी झूठ नहीं बोलते। बहुत बार ऐसी धारणा बैठ जाती है बच्चों को, घर में माता पिता पढ़ाते हैं उसमें और स्कूल में शिक्षक पढ़ाता उसमें, यदि कहीं थोड़ा कोई भेद आ गया तो बच्चा यही कहेगा कि मां पिता को बोले ये गलत बता रहे हैं, हमारे गुरुजी ने इसका अर्थ ऐसा बताया था। इतना दृढ़ विश्वास होता है गुरु के प्रति, वो जानते हैं कि ये तो अपना घर का काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, ये हमारी पढ़ाई में क्या समझे। वो गुरु जिनका काम यही है वो यथार्थ ज्ञान को समझते हैं, आप तो पुरुष वही है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, इसलिए यहां कहते हैं जो आप्त पुरुष हैं उनके द्वारा ही वो दस, उसको पता हो गया कि दसवां है, परोक्ष ज्ञान ही तो हुआ। वो बात अलग है, उसने कहा कि गुरुजी फिर दसवां है तो किधर है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, एक चेटा मार करके कहा ये तू ही है, तब उसको फिर परोक्ष का अपरोक्ष हो गया, वो अलग बात है। पर पहला ज्ञान आप्त पुरुष के द्वारा इतना कहते ही उसको शांति हो गई, एक बार कहते ही चिंता मत करो दसवां यही है, कितनी बड़ी शांति हो जाती है। कभी डॉक्टर के पास में जाओ, बड़े परेशान हो, लग रहा है कि शायद मेरे रोग का निवारण नहीं होगा, डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हूं, बड़ी परेशानी है और मैं ठीक भी होऊंगा कि नहीं। डॉक्टर कहते क्या बात करते हो, ठीक होऊंगा कि नहीं? अरे आप ठीक हो गए, यहां आ गए ना, आप ठीक हो गए। डॉक्टर पर कितना बड़ा विश्वास होता है, जब वो मरीज सुनता कि मैं ठीक हो गया, उसने उसका चेहरा देखना, हुआ नहीं है पर अटल विश्वास हो गया कि डॉक्टर कहे ठीक हो गया, इसका अर्थ है मैं अभी बचने वाला हूं, है रोग से निजात मिलने वाली है। कितनी बड़ी संतुष्टि, एक शांति मिल जाती है। तो परोक्ष ज्ञान भी तो बहुत बड़ा एक लाभ शांति देता है। पता नहीं कब ठीक होगा, पर डॉक्टर ने बोल दिया कि तू ठीक हो गया, उतने में ही शांति मिल जाती है, वो परोक्ष ही तो है। इसलिए सकृत आप्तोपदेश न परोक्ष ज्ञानम उद्भवेत, आप्त पुरुष के द्वारा एक बार उपदेश देने पर परोक्ष ज्ञान प्रकट हो जाता है। विष्णु मूर्ति उपदेशो ही न मीमांसम अपेक्षते, इस प्रकार से जो विष्णु मूर्ति में तुमने प्रश्न खड़ा किया था, प्रतिमा आदेशो विष्णुत्वे, प्रतिमा में भगवान विष्णु रहते हैं और इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं, उसको कौन निवारण करेगा? तो प्रश्न करने वाले ने कहा कि नास्तिक निवारण करेंगे जो नहीं मानते। सिद्धांत में कह दिया कि उनकी बात तो यहां उठाओ मत, क्योंकि वो नास्तिक है, उनका यहां प्रसंग ही नहीं है, यहां श्रद्धावानों का प्रसंग है। विष्णु मूर्ति उपदेशो ही उस आप्त पुरुष के द्वारा एक बार कहे जाने पर भगवान विष्णु का परोक्ष ज्ञान तो प्रकट होता ही है। कहां? विष्णु मूर्ति उपदेशो, विष्णु मूर्ति में उसे विष्णु का उपदेश किया है, मूर्ति के अंदर विष्णु का उपदेश किया है कि यहां पर चतुर्भुज भगवान विष्णु है, ऐसा ध्यान करो। अब सामने भगवान शालिग्राम को रख दिया और फिर पंडित जी मौन मंत्र बोलते हैं, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिभिर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलते मंत्र और जो पूजक होता है उसको कहा, बोले आंख बंद करके ध्यान करो, सामने शालिग्राम है। अब बताइए वो जो पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं उसका अर्थ ध्यान करेंगे कि सामने जो रखे हुए हैं शालिग्राम उसका ध्यान करेंगे? मान लिया कि साक्षात वही हैं जो मंत्र का अर्थ है, उस शालिग्राम का अप्रोक्ष होते हुए भी जो परोक्ष ज्ञान है वो हो रहा है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, उस रूप में ज्ञान हो रहा है। क्यों हुआ ये ज्ञान? क्योंकि पंडित जी महाराज ने बताया है, आप्त पुरुष ने बताया है, तो आप्त पुरुष के द्वारा एक बार बता देने पर भी विष्णु मूर्ति का जो उपदेश किया है ये कि भगवान विष्णु की मूर्ति है, शालिग्राम को विष्णु ही मानेंगे और गोल मटोल पिंड को शिव ही मानेंगे। शालिग्राम कौन है? यह विष्णु है, निश्चित हो जाता है ना। अब हो सकता है यदि बच्चे को पहले से ही मां अगर उल्टा बता देती तो बोले शालिग्राम है इनको शिवजी बोलते हैं और जो पिंड है उनको विष्णु जी बोलते हैं, तो बच्चा मान लेता कि नहीं? क्योंकि उसके लिए मां प्रबल प्रमाण है, उसकी वाणी प्रमाण है। तो जैसे बच्चा मान लेता है, हम भी तो श्रुति मां के बच्चे हैं, उन्होंने विष्णु में मूर्ति के अंदर भगवान विष्णु का जो ध्यान बताया एक बार कहते ही हम मान लेते हैं, इसलिए मीमांसाम न अपेक्षते, यहां कुछ तर्क करने की जरूरत नहीं है, मीमांसा की जरूरत नहीं है। ननो उक्त लोकानुभवे न दृढ़यति विष्णु मूर्ति थी। बस ठीक है, वो लोक में जैसा होता उसको दृढ़ कराने के लिए श्लोक आया है। ननो तरहि शास्त्रेषु कुतो विचारा क्रियन्ते इति आशंक्य अनुष्ठेयो कर्मोपासनयो संदेह संभवात तद निर्णयाय विचारा क्रियन्ते इति आह। एक प्रश्न खड़ा करते हैं, तरहि शास्त्रेषु कुतो विचारा क्रियन्ते इति आशंक्य। कहते हैं कि चलो मीमांसा की जरूरत ही नहीं है, श्रद्धा से मान लो, श्रद्धा से मान लो तो सब जगह फिर अंधश्रद्धा करके मान लो ना, फिर शास्त्रों में विचार की बात क्यों कही जाती है। ये भी तो कहा था ना कि शास्त्रों में विचार करना चाहिए, श्रवण करो, श्रोतव्य मंतव्य, मनन करो। मनन किसके लिए होता बताइए, मनन भी तो एक विचार है, विजातीय प्रत्ययों को निवारण करने के लिए मनन की भी तो जरूरत पड़ती है। तो मीमांसा तो हो ही रही है, बोल दिया कि तत्वमसि व तुम हो, तो जब तक ये विचार नहीं करेगा कि वह मैं कैसे हूं, मीमांसा तो करनी ही पड़ेगी। वह मैं कैसे होगा, वह और मैं का कोई मेल नहीं है, वह हमसे भिन्न है, वह हमसे दूर है। दूर की वस्तु के लिए तद शब्द का प्रयोग आया, तो देश में काल में वस्तु में जो अपने से सर्वथा अलग है वो मैं कैसे हो सकता हूं, तब मीमांसा करने की जरूरत है। वहां उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए प्रेमपुरी आश्रम में कभी कोई व्यक्ति आया निमित्त विशेष को लेकर के, यहां मिला और वही व्यक्ति कोई छह महीने बाद किसी और धार्मिक सभा में मिला। अरे अरे आप मिले थे हो, वही तो हो जो प्रेमपुरी आश्रम में लिफ्ट में मिले थे मेरे से, वही हो। बोले हां वही हूं। तो वह तुम ही हो जो लिफ्ट में मिले थे, या यूं कहेगा अपना परिचय देते हुए कहेगा आपने मुझे पहचाना, मैं वही हूं जो प्रेमपुरी आश्रम में लिफ्ट में आपसे परिचय हुआ था, मैं वही हूं। अब प्रेमपुरी आश्रम अलग चीज है, कहीं माधोबाग में मिला हो, वो स्थान अलग है, वो समय अलग है, यहां पहले मिला था अब आज वर्तमान में मिल रहा है, वो भूत में था अभी वर्तमान में हो गया, तो वह मैं कैसे होगा। तब मीमांसा की जरूरत है भाई, उस स्थान को छोड़ो, उस समय को छोड़ो, केवल व्यक्ति को पकड़ो, तो उसके तुम्हारी एकता हो जाएगी, वह तुम हो। इसी प्रकार से जिसको सचित आनंद कहा है वो मैं हूं, ये बात बाद में समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं आप यह कहते हो कि शास्त्र में मीमांसा की जरूरत नहीं है, यहां तो श्रद्धा की जरूरत है, प्रतिमा आदि में विष्णु है यो श्रद्धा से मान लो, मीमांसा की आवश्यकता नहीं। तो तरही शास्त्रेषु कुतो विचारा क्रियन्ते, यदि सर्वत्र शास्त्र में मीमांसा की जरूरत नहीं है, विचार की आवश्यकता नहीं है, तो फिर क्यों किया जाता शास्त्रों में विचार। फिर तो बिल्कुल अन्य धर्मों में जैसा कहते हैं, देखो हमारे सनातन में और अन्य धर्मों में यही तो भेद है, जो अन्य तथा कथित धर्म कहलाते हैं मजहबी लोगों के, वहां पर जो कह दिया उसको मानना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसा है तो वैसा ही मानना पड़ेगा। लेकिन हमारी तो परंपरा में ऐसा नहीं है, यहां विचारों की स्वतंत्रता है। वहां अन्य धर्मों में आचरण की स्वतंत्रता है, आप जैसे चाहो वैसे रहो, जो चाहो वो खाओ पियो, जैसे चाहो वैसे रहो, कोई बंधन नहीं है। पर विचारों की स्वतंत्रता है, जिस धर्म में पैदा हो गए उसका जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वह यह स्वतंत्रता है विचारों की, आचार की स्वतंत्रता है। और हमारे सनातन की तो यह विशेषता ही है कि यहां आचार की स्वतंत्रता नहीं है, आचार की प्राधीनता है, آج کل بھلے ہی اس کا الگھن ہونے لگا ہو بات الگ ہے, اور دوسری اور وچاروں کی سوتنترتا ہے. اس لیے شاستر نے کہا وہاں پر بھی ہم ترک کر کے مانتے ہیں. ٹھیک ہے شاستر اسطیہ نہیں بولتا, لیکن وہ درڑ ہو ہمارے بھیتر, اس کو ٹھیک سے سمجھیں, اپنے سمجھیں, مان کر کے بھی ویکتی اپنا تو کلیان کر سکتا ہے, لیکن کیول مانا ہوا دوسرے کا کلیان نہیں کرا سکتا. وہ اس کو تو جانا ہوا ہی کرا پائے گا. جب تک شاستر کو سمجھ نہیں لے گا تو سامنے والے کے ترک کا جواب کیسے دے گا؟ وہ وچار کی ضرورت ہے, ترک کی آوشیکتا ہے. اس لیے پیچھے جو کہا گیا کہ وشنو پرتیما میں وشنو آدی جو ہیں وہاں پر میمانسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ شردا سے مان لینا چاہیے, میمانسا کی اپیکشا ہی نہیں ہے. تب کہتے ہیں کہ یدی میمانسا کی سروتا ہی ضرورت نہ ہو تو شاستریشو کتو وچارا کریئنتے, یہ شاستروں میں وچار منتھن کیوں کرتے ہیں؟ مان لو پھر چپ چاپ, جیسا کہے ویسا مان لو. تب کہتے ہیں نہیں, انوشتے یہ یو ہو کرماؤ کرموپاسن یو ہو سندہ سمبھوات تد نرنیائے وچارا کریئنتے ایتی. بولے نہیں نہیں, سروتا یہ نہیں ہے کہ اس کا وچار مت کرو. ارے شاستر جو کہتا ہے وہ ستیہ ہے, یہ تو شردا کرو. وہاں تک شردا کی ضرورت ہے. پر شاستر نے کہا وہی ستیہ ہے, کیسے؟ اس کیسے کا اتر جاننے کے لیے پھر میمانسا کی ضرورت ہے, وچار کی ضرورت ہے. پر شاستر کہتا وہی ستیہ ہے, یہ مانو کہ نہ مانو, یا میمانسا کی ضرورت نہیں یا شردا کی ضرورت ہے. شردا سے مانو کہ شاستر جو بولتا ہے وہ ستیہ ہے. اب ستیہ کیسے, اس کے لیے وچار کیا جاتا ہے. انوشٹھان انوشٹھیے یو کرموپاسن یو ہو, جو انوشٹھیے کرم اور اپاسنا ہے, جس کا انوشٹھان کرنا ہے, کوئی کرم کر رہا ہے اور کوئی اپاسنا. کرم اور اپاسنا میں کیا انتر ہوگا؟ یہ دیوی ہیں تو دونوں ہی کرم ہیں. ایشاواسیہ اپنیشد میں دیکھو گے وہاں دو ہی بھید کیا ہے, گیان اور کرم. پر شاریرک اور مانسک لے کر کے کرم اور اپاسنا کا بھید ہو گیا. مانسک کرم سمجھ لو اپاسنا ہے, اور شاریرک جو کرم ہے وہ کرم کہلائیں گے شریر کے دوارا نشپادت ہونے والے, اور جس کو استول شریر سے نسپن کرنے کی ضرورت نہ ہو مانسک روپ سے کر لو. آتما تم گرجا متی سہچرا پرانا شریرم گرہم پوجاتے وشیوب بھوگ رچنا. بھاونا سے پوجا ہو گئی کہ نہیں, یہ اپاسنا ہو گئی. اس لیے اپاسنا جو ہوتی ہے اس میں مانس کی پردھانتا ہے, کرم جو ہوتا ہے استول شریر کی پردھانتا ہے, دونوں کو انوشٹھیو کرمو اپاسنا یو ہو. تو شریر اور من سے ہونے والے کرم اپاسنا جو ہیں یہ دونوں انوشٹھیے ہیں, انوشٹھان کرنے یوگیہ ہیں, شاستر پرتیپادت ہیں. اس میں سندہ سمبھوات, کبھی کبھی سندہ ہو جاتا ہے. سندہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے سندہ ہو جاتا ہے کہ ایک ہی کرم یا اپاسنا کو جب ہم لوگ جس شاستر میں شردا کرتے ہیں اس شاستر کو لے کر کے دیکھتے ہیں تو کہیں کچھ الگ ڈھنگ سے اس کا ورنن ہوا ہے, تو کہیں انیہ ڈھنگ سے اس کا ورنن ہوا ہے. اب اس کے تاتپریہ کو سمجھنے کے لیے کہ کہنے کا بھاو ایک ہی ہے یا اس میں کوئی انتر ہے, آپ برہم سوتر پڑھا ہے نا, گنوپسنگار پڑھا, تو جتنا بھی ترتیہ ادھیائے کا گنوپسنگار پرسنگ ہے وہ سارا کا سارا گنوپسنگار اسی لیے تو ہے. کرم اور اپاسنا میں سندیہ جو اپستھت ہوتا ہے ایک ہی چیز, انیہ جگہ کچھ کہی گئی, انیہ شاستر میں اپنیشد میں کچھ انیہ ڈھنگ سے کہی گئی ہے, تو ان دونوں کی سمانتا کیا ہے یہ جاننے کے لیے تو پرامرش کرنا ہی پڑے گا, میمانسا کرنی ہی پڑے گی, وچار کرنے ہی پڑیں گے. تو یہی کہتے ہیں کہ کرم اپاسنا اور سندیہ سمبھوات, کرم اور اپاسنا کے سمبندھ میں جب سنشے ہو جاتا ہے, سمبھو ہے وہی جاتا ہے کیونکہ الگ الگ ڈھنگ کے واقعے ملتے ہیں. تن نرنیائے وچارا کریئنتے, اس کا نرنے کرنے کے لیے विचार की जरूरत है। तो शास्त्र कहता है इसलिए मानना है, वहां विचार की जरूरत नहीं। लेकिन शास्त्र ने किस दृष्टि से कहा है ये जानने के लिए फिर विचार की जरूरत है। तो न तो विचार का विरोध है, उतने अंश में मीमांसा भी करनी पड़ती है, और शास्त्र कहता वो सत्य कि असत्य है, बोले ये मीमांसा करने की जरूरत नहीं, जो कहता शास्त्र सत्य ही बोलता है। समय तो हो गया, चलो इसको फिर कल उठाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।